ओम शांति। सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे बीच दिव्या भिंज जी आए हैं, तो एक बार हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। दिव्या भिंज जी जो है, जैसे हमारी बात चल रही थी, किसी ने पूछा था, ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली गुड़गांव में है, वहाँ पे 11 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और वहाँ जैसे दिल्ली राजधानी है तो बहुत सारी ट्रेनिंग आदि आप कराते हैं, और 30 वर्षों से इनको मेडिटेशन प्रैक्टिस का, राजयोग का मेडिटेशन प्रैक्टिस का अभ्यास है। और दीदी, ये सारे पूना में जो MIT इंस्टीट्यूट है तो वहाँ के स्टूडेंट है, और वहाँ अभी नया कोर्स शुरू हुआ है मेडिटेशन के लिए, तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, और ये हर प्रकार का मेडिटेशन जो ट्राई करते हैं उसमें हमारा भी सिलेबस है राजयोग मेडिटेशन, तो इनकी ये स्टडी टूर है, उस हिसाब से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ओम शांति। वैसे प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है और बहुत जगह पर है।
ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। फेसेस पर स्माइल्स के साथ गुड मॉर्निंग। अभी 12 नहीं बजे ना, तो गुड मॉर्निंग चलेगा। ओके, सो आप कल से यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन में भी जाते हैं, क्या है, कैसे वर्किंग चलती है, ये सब चीजें। ओके, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सब जानते हैं? सब जानते हैं अच्छे से? नहीं, कोई ऐसे सिर हिला रहे हैं? नहीं, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्विक इंट्रोडक्शन 1 मिनट में देती हूँ। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन 1936 में एस्टेब्लिश हुई सिंध हैदराबाद में, विच इज नाउ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और जब ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई तब ये ओम मंडली के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल थे जो प्रैक्टिस करते थे मेडिटेशन को, और उस टाइम पे प्रॉपर मेडिटेशन भी इतने वास्ट लेवल पर एक्सप्लोर नहीं हुआ था, जस्ट बेसिक प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर रहे थे और ओम शब्द का उच्चारण करते थे, इसीलिए ओम मंडली कहते थे। 1950 में आफ्टर भारत पाकिस्तान पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर हुई भारत में, तब इसका ऑफिशियल नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर दादा लेखराज जी थे, और जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा हमारी जो संस्कृति है, इंडियन संस्कृति में किसी भी चीज के क्रिएटर को ब्रह्मा कहते हैं, घर में फादर को भी ब्रह्मा कहते हैं, किसी भी चीज के रचयिता से इंट्रोड्यूस कराना हो तो ब्रह्मा कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इसलिए हम उनको प्यार से ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कुमारीज इसीलिए कहा गया क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी 1937 में, उस टाइम पे सिस्टर्स का, बहनों का, महिलाओं का सोसाइटी में ऐसा कोई स्टेटस नहीं था, उन्हें किसी भी चीज के लिए आगे नहीं रखते थे, ना सोशल कॉज के लिए, ना रिलीजियस कॉज के लिए, स्पिरिचुअल के लिए भी नहीं, प्रैक्टिकली किसी भी चीज में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर का ये स्ट्रांग बिलीव था कि विमेन जो है बहुत शक्ति है, नारी शक्ति है, तो इसीलिए उस टाइम पे उन्होंने 8 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया, और जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन आगे रन होगी, तो उन्होंने एक सिस्टम सेट किया। तब से लेकर आज दिन तक ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हेडिंग पोजीशंस है, मेजरली सिस्टर्स द्वारा रन की जाती है, ऐसा नहीं है ब्रदर्स नहीं है, ब्रदर्स आर ऑल्सो देयर, उनकी भी पोजीशंस है, लेकिन ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे डेडिकेटेड रूप से सिस्टर्स जो रहती हैं, सो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में आप मेजॉरिटी पाएंगे। फिर उसके पश्चात ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को कई पीस मैसेंजर अवार्ड मिले। 1982 में 7 पीस मैसेंजर अवार्ड मिला UN द्वारा, यूनेस्को, यूनिसेफ के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड 140 कंट्रीज में अप्रोक्सीमेट इसकी 5000 ब्रांचेस हैं, जहां पर देश और विदेश में ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन के लिए फेमस है। मेडिटेशन क्या है? सिंपल प्रोसेस है, हाउ टू जनरलाइज योर थॉट्स। अगर एक लाइन में हम इसको डिस्क्राइब करें. ठीक है, तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक कि हम सभी आपस में थोड़ा सा एनवायरमेंट को लाइट करें. ठीक है, सो दैट वी कैन फ्लो में हम चल सके. राइट, करेंगे. ओके, सभी प्लीज खड़े हो जाए. सो आपको करना क्या है, मैं आपको 2 से 3 काम दे रही हूं. इट इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस. इसमें आप सभी को फ्लावर्स पसंद है, सभी को पसंद है. ओके, पता है ना कौन सा फ्लावर पसंद है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए, इवन ऐसा भी हम कह सकते हैं आज पूरे दिन के लिए, वो फ्लावर, जो भी फ्लावर आपको XYZ पसंद है, वो फ्लावर का नाम आपका नाम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रोज पसंद है, सो माई नेम इज रोज. लिली पसंद है, लिली. सनफ्लावर पसंद है, सनफ्लावर. ओके. सो अभी आप जब आपस में इंट्रोडक्शन करेंगे, आपको इस न्यू वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है. हेलो, आई एम रोज. ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम पुणे. जो भी आप बेसिक चीजें, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहें, यू कैन शेयर. आफ्टर दैट, भैया माइक में करंट है क्या? सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, वो फ्लावर की कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है जिसके कारण वो फ्लावर पसंद है. फॉर एग्जाम्पल रोज मुझे पसंद है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है, वाइब्रेंट कलर है. सो जब भी मैं रोज को देखती हूँ, रोज को डेकोरेट करते हैं, तो रूम का एनवायरमेंट बहुत लाइट हो जाता है, बहुत प्योर हो जाता है, फ्रेग्रेंट हो जाता है. तो मेरी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है, व्हेन आई एंटर इनटू द रूम वो लाइट हो जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है. सो आपको अपनी पर्सनालिटी से को रिलेट करना है. सिस्टर मेरे ना उसमें हैंकी होगा, बैग में वो दे दीजिए. नहीं, वो अर्थिंग नहीं है शायद, यहाँ पर इसीलिए हो रहा है. सो मेरी पर्सनालिटी में ऐसी एक बात जो उस फ्लावर की क्वालिटी से कोरिलेट करती है वो आपको शेयर करनी है. और लास्ट में तीसरा, आपको बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए आपके पार्टनर को आपको ब्लेसिंग्स देनी है फॉर उनकी लाइफ. ठीक है, 3 काम है, हो जाएगा. स्टार्ट करें. सो मैक्सिमम आपके पास 5 मिनट्स हैं. 5 मिनट्स में आपको 2 लोगों से कम ये सारा इंट्रोडक्शन करना है. स्टार्ट करें. किन्हीं भी 2 लोगों से कर सकते हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम आप 4 करें, कवर 5 करें, दैट इज अप टू यू. रैंडम उनको चूज करें जिनको आप नहीं जानते, सो दैट वुड बी गुड. ठीक है, सो ये टाइम स्टार्ट नाउ, यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटी. इतना टेक्निकली फोन में नोट करने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन. आपका टेस्ट पेपर नहीं होगा. मिनिमम 2 लोगों से, मैक्सिमम आप जितने भी कवर कर पाए. हो गया. ओके, जिनका कंप्लीट हो गया यू कैन टेक योर सीट बैक, कैन सिट. जिनका हो गया वो बैठ सकते हैं. ओके, ओम शांति, थैंक यू सो मच. डन. ओके, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके. पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसे क्यों बिठा दिया गया हमें यहाँ. ठीक है, ओके, थैंक यू. सो आपने जो भी शेयरिंग की, कोई शेयर करेंगे, आप कितने फ्लावर्स से मिले, कौन कौन से फ्लावर्स से मिले, नेम द फ्लावर्स. लोटस, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, बेली, चमेली, ऑर्किड, सोन चापा, ये कौन सा फूल होता है, चंपा. हाँ जी, इसमें है. अच्छा, निस्टैशियम, मैंने कभी सुना नहीं है. अच्छा, बोटानिकल नेम तो नहीं है. क्योंकि बोटानिकल नेम्स याद नहीं रहते हैं. ठीक, मैरीगोल्ड ओके अच्छा कौन कौन सी क्वालिटीज मिली उसमें आपको प्यूरिटी फ्रेग्रेंस में वाइब्रेंट कलर ब्यूटीफुल अच्छा उसकी जो उसके जो हाँ यूजेस अच्छे रहे अच्छा तो उसको कैसे कोरिलेट किया आपने अपनी पर्सनालिटी से जिन्होंने भी बताया है कलर नहीं नहीं अच्छा खुश हो रहे हैं वो लंबा टाइम रहता है हर एक के प्रति ओके ओके बहुत अच्छा थैंक यू सो मच लास्ट एक चीज बताइए आप में से किस किस ने एक दूसरे को ब्लेसिंग दी है रेज योर हैंड्स जिसने नहीं दी उनसे पूछेंगे पहले जिन्होंने दी है ओके मेजॉरिटी ने दिया है जिन्होंने नहीं दी ऑनेस्टली हैंड रेज करेंगे हम भूल गए इट्स ओके इट इज नेचुरल कभी कभी होता है अच्छा ऐसे भी हैं ओके थैंक यू सो मच ओके सो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे हार्मनी इन रिलेशनशिप्स लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट 30 सेकेंड्स का एक रिफ्लेक्शन करते हैं इस रिफ्लेक्शन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको अपने आप को एनालाइज करना है इंटरनली अपने आप को चेक करना है क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स भी बैठे हैं प्रोफेसर्स हाथ खड़ा करेंगे कौन है ओके एंड स्टूडेंट्स बाकी सभी स्टूडेंट्स हैं ठीक है सबके पास डायरी पेन है ना ओके अभी नहीं चाहिए वैसे ही पूछ रही थी मैं सो आपको इस एनालिसिस में क्या करना है अपने आप को चेक करना है तीन क्वेश्चन क्योंकि रिलेशनशिप का सेशन है रिफ्लेक्ट करेंगे अपने आप के ऊपर या हम मेडिटेशन नहीं करें मैं आपको देती जाती हूँ साथ साथ सो आप अपने आप को आंसर और मार्किंग देते जाएगा बैकबोन स्ट्रेट करेंगे आईज क्लोज करेंगे अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को ऑब्जर्व करें बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो मैं सस्टेन करती हूँ अब अपने आप को देखें अपनी पर्सनालिटी को देखें और चेक करें आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को अपनी पर्सनालिटी के लिए कितने मार्क्स देती हूं सेकेंड क्वेश्चन जब भी कोई बात आती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं या कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज हैं तो उसमें मैं रिएक्ट करती हूँ या रिस्पॉन्ड करती हूँ चेक करेंगे तीसरा अपने आप को चेक करेंगे मैं अपने आप को अपने रिश्तों को चलाने में संभालने में 10 में से कितने नंबर दूंगी कितना अच्छे से मैं उनको मैनेज कर पा रही हूं आउट ऑफ 10 अपने आप को नंबर दे अब अपने आप से पूछे क्या मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है अगर हाँ तो क्या और अगर लगता है कि कोई जरूरत नहीं है सब ओके है तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं एक रिलैक्स्ड लंबी गहरी सांस लें धीरे से छोड़ें आईज ओपन करेंगे थैंक यू आपको अपने आप को मार्क्स मिले, आंसर्स मिले, पूछूंगी नहीं कितने मिले, जस्ट ये सुनो, ठीक है। ओके, सो सेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन के हम कुछ रूल सेट कर ले स्टार्ट करने से पहले, करे? ओके, करे ना, हाँ या ना? ओके, पहला है रूल कि हम इस सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे। इंटरैक्टिव माना मैं कुछ बात करूंगी, आप कुछ बात करेंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, मैं आपको सेशन कराने नहीं आई हूं, ठीक है? आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम आपस में बातचीत में ही पूरा सेशन निकालेंगे, राइट है? ओके है या नहीं है? ओके, सेकंड ये है कि सेशन मैं ऐसा भी ना हो कि मैं सुनाती जाऊं, और क्योंकि समय थोड़ा सा दोपहर का शुरू हो गया और आप सुनते सुनते क्या हो जाए, सो जाए या खो जाए, पर आपने तो गलत सोचा। हाँ नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप सो जाए और मैं आपको सुलाने आऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो बेटर है जिस भी पॉइंट पे सेशन में आपको लगे कि सेशन थोड़ा ज्यादा डीप जा रहा है और थोड़ा सा समय का असर हमारे ऊपर हो रहा है, फ्रीली एंड फ्रैंकली आप कभी भी पूरे सेशन के दौरान हैंड रेज कर सकते हैं कि हमें कुछ एक्टिविटी या कुछ एनर्जाइजर या हम कुछ इस तरह से कराएं, ठीक है? ओके है ना, ये भी ठीक है? ओके, थर्ड आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी के पास जरूर मल्टीमीडिया के साधन होंगे, आपके पर्स में, पॉकेट में, तो आप उसको कृपया करके साइलेंट मोड पे रखें, ठीक है? ओके है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सो अभी का हमारा जो सेशन है वह है हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो अगर मैं आपको कहूं कि रिलेशनशिप्स को आपको डिफाइन करना है इन वन सेंटेंस और इन वन लाइन, सो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? यस, व्हाट इज रिलेशनशिप? जो भी आपके मन में आप बोल सकते हैं फ्रीली एंड फ्रैंकली। जी, अंडरस्टैंडिंग, ओके, और कंपेनियनशिप, ये उसकी क्वालिटीज हो गई। बेसिकली व्हाट इज रिलेशनशिप, हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड रिलेशनशिप? अच्छा, दो लोगों के बीच का रिलेशन, तो रिलेशन ही क्या है? हाँ, लव एंड अफेक्शन, दिस इज ऑल्सो द क्वालिटी में उसको हम लेकर के जाएंगे। यस, बिलोंगिंगनेस, ओके, बॉन्ड है, कनेक्शन है, टू नोइंग ईच अदर इन अ वेल नोन मैनर, ओके, एक दूसरे के साथ रहना है, ओके, जरूरी नहीं है हम सबके साथ रहते, वी आर इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी वी आर ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप बट वी आर नॉट लिविंग टूगेदर, ठीक है? बट देयर इज अ रिलेशनशिप। सो व्हाट द वर्ड रिलेशनशिप, हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड रिलेशनशिप? थोड़ा सा क्लोज आंसर है, क्या गिव एंड टेक करना है वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम बेसिकली रिलेशनशिप को डिफाइन करें, सो द वर्ड रिलेशनशिप रेफर्स टू गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ एनर्जी, वेदर इट इज नेगेटिव और वेदर इट इज पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी का आदान प्रदान रिलेशनशिप कहलाएगा, राइट? फिर इस एनर्जी में इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ उसमें, उसकी आगे सब कैटेगरीज और उसमें क्वालिटीज में आ जाएगा, ठीक है? अब क्या गिव और रिसीव करना है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक और मेरा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है रिलेशनशिप टूटने के या खराब होने के क्या फैक्टर्स हैं? राइट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या हम इसको जिस सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मिसअंडरस्टैंडिंग इन वन वर्ड ना, यहां से भी कुछ बोला था किसी ने, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, एक्सपेक्टेशंस एंड ईगोज को हम एक में रखें, मार्कर दिख रहा है, एक्सपेक्टेशंस, ईगो और वो फिर ये इसी में ही आ जाएगा, इसी की सब कैटेगरी ले सकते हैं, एक्सपेक्टेशन और ईगो। भैया मार्कर और अच्छा मिल सकता है, ओके, और ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, राइट, रिस्पेक्ट। धीरे धीरे बंद ही होता जा रहा है, ठीक है, ओके। लास्ट एक मैं इसमें ऐड करूंगी अजम्पशन, जो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो अजम्पशन की तरह ही है, ठीक है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, इतने ही लेते हैं क्योंकि हम इतने ही कवर कर पाएंगे इतनी देर में, ठीक है। फर्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो एक एक्टिविटी करते हैं, सबके पास नोटपैड पेन है, ठीक है, सब ओपन कर लीजिए। अब एक्टिविटी की कुछ शर्तें हैं, ध्यान से सुनिएगा फिर करिएगा। एक्टिविटी की शर्त ये है, पॉइंट नंबर वन, मैं आपको कोई कार्य दूंगी वो आपको कंप्लीट करना ही है, डन, क्लियर है। पॉइंट नंबर टू जो एक्टिविटी की शर्त है वो ये है कि मैं जो भी बोलूंगी वो काम टाइम पे होना चाहिए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से प्रश्न मत पूछना, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, शर्त नंबर थ्री, और अगर आप प्रश्न मेरे से पूछते हैं तो मैं आंसर नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं बोलने वाली मैं, लेकिन मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए जो मैं आपको देने वाली हूं, ठीक है। स्टार्ट करें। भैया चल रहा है कोई मार्कर? कोई भी नहीं चल, लेके आ रहे हैं, ओके, स्टार्ट करें। एक लाइन कीजिए, उसको नाम दीजिए ए और बी, बी से एक सीधी लाइन कीजिए, उसको नाम दीजिए सी, सी को ए से मिला दीजिए, सी के ऊपर से एक लाइन कीजिए, उसको नाम दीजिए डी और एफ, हो गया, टाइम्स अप। तो अपनी नोटपैड ऊपर करके दिखाएं आपने क्या किया है, नहीं अच्छे से दिखाओ ना, वो कुछ नहीं भी मुझे दिखना चाहिए, ओके, उधर वाले में दिख नहीं रहा, अच्छा, ओके, आपने कुछ नहीं किया, खाली तो दिखा दो, ठीक है, ओके। सो मैंने आपको क्या कहा था, एक लाइन खींचना, अब आप शुरू से रिपीट करो क्या करना है, आप बोलते जाओ मैं बोल करते जाऊंगी, ए और ये पॉइंट बी है, ये एक लाइन है, ठीक है, ओके। अब आप थोड़ी विजुअलाइजेशन यूज कर लेना, फिर क्या कहा था आगे, बी से एक सीधी लाइन खींचनी है, राइट, ये 90 डिग्री एंगल पर एक सी लाइन है, इसका पॉइंट है सी, फिर क्या था, सी को ए से मिला दिया, तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, चलो फाइनली आपको दिख जाएगा, एक लाइन ए एंड बी, बी से एक सीधी सी, सी को ए से मिलाया, उसके आगे क्या था, किसको, एक चीज मिस कर दिया आपने, मैंने कहा था सी से ऊपर एक लाइन खींचनी है, उसको नाम देना है डी और एफ, ये बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना, अब मैं आपको पूरा चांस दे रही हूँ, जिंदगी में ऐसा कोई चांस देता नहीं है, मैं दे रही हूँ, आप जी भर के मेरी इस एक्टिविटी की गलतियां निकाल सकते हैं, बताइए। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, राइट। हाँ, जब आप जो आप मैंने कहा वो आपने समझा नहीं, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं थे, बहुत ही बहुत रेयर गैप था सेंटेंसेस में, और तो वो तो पहले ही बता दिया था जी। ओके, कंसंट्रेशन ठीक नहीं था, और बस और कुछ? इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सुनी नहीं। ओके, और किसी को कुछ कहना है? हाँ, राइट है, मैं सरल शब्दों में बता सकती थी, राइट। ओके, और कुछ? मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, राइट। हाँ, मैं ज्यादा आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली मैंने, वाओ। राइट, भैया आपने फिजिक्स ली थी कभी? हाँ, लग रहा है जी, मुझे आपको पजल करने का मेरा इंटेंशन था। अच्छा, और किसी के दिल में कुछ रह गया तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूं। जब एक्टिविटी की शुरुआत की थी, मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला था, मैं एक एक्टिविटी कराने जा रही हूं, उसकी कुछ शर्तें हैं, और मैंने आपको कहा था कि शर्तें ध्यान से सुनिएगा, फिर काम करना शुरू कीजिएगा, राइट। और जब मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया, तो मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शंस क्लियर दी थी कि भाई आप ध्यान से सुनना तो आप कर सकते हो, यहां मिस हो गया। और जैसे ही आपको ये एक्टिविटी की शर्तें मैंने बताई, और पहली शर्त बताई कि मैं आपको जो एक्टिविटी कराऊंगी आपको ये काम कंप्लीट करना ही है, इन सटल वे मैंने आपको ये फीडिंग दी, आई एम द बॉस एंड यू हैव टू डू व्हाटएवर आई एम सेइंग, राइट। यहां पर ही वो एक छोटा सा कम्युनिकेशन इंटरनली सटल वे में ब्रेक हो गया। सेकेंड पॉइंट, जब मैंने आपको ये कहा कि शर्त दूसरी ये है कि आप कुछ क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछ सकते, अब और ज्यादा कम्युनिकेशन के आगे बैरियर आ गया कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अंदर से हम अटेंटिव होना चाह रहे थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन सटल वे शर्तों में उलझ गए। थर्ड पॉइंट, मैंने आपको कहा कि अगर आप पूछेंगे ना, मैं तो भी आंसर करने वाली नहीं हूं, लेकिन मेरा काम आपको कंप्लीट करके देना विद इन टाइम लाइन, राइट। मैंने एक्टिविटी शुरू की, मैंने आपको काम फटाफट से बता दिया, मैंने ये समझने की कोशिश नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैंने अपना काम उतार दिया, आपको काम दे दिया। अब क्योंकि सटल वे में हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं हुआ शर्तों के कारण, रिजल्ट कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसको हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। रिजल्ट आपने सोचा था ठीक है, पूछेंगे तो भी सुनेंगे, ना पूछेंगे तो भी सुनेंगे, जितना होता उतना ही कर दो, चाहे खाली रह जाए, चाहे एक लाइन ही खींची जाए, चाहे जितना भी बने, आपने उतना ही कर दिया जितना, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम ये शर्तें कहते नहीं हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से शो करते हैं। रिजल्ट कम्युनिकेशन गैप रिलेशनशिप गैप में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस बात पे फोकस कीजिएगा, कम्युनिकेशन गैप रिलेशनशिप गैप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। हम एक दूसरे को कहते नहीं आई एम द बॉस, लेकिन हम हमेशा जताते यही हैं कि मैं सही हूं। दूसरा, कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। प्रैक्टिकली मैनेजमेंट वर्ल्ड में भी आप जाएंगे, कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर वन, आप जो भी कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लीन एंड क्लियर नहीं थी, ना क्लीन थी ना क्लियर थी, राइट? दूसरा, अब क्लीन और क्लियर में अंतर क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लो मैंने आपको कहा कि ये हॉल में अभी सेशन हुआ था, कुछ कुछ पेपर और ये सब चीजें रखी, आप हॉल को क्लियर कर दो, राइट? क्लियर कर दिया, साफ नहीं हुआ। अब जब आप प्रॉपर सफाई करेंगे, मैं आपको कहूंगी अच्छा आप इसकी सफाई भी कर दो, साफ भी कर दो, तो आप हर कोने से हर चीज की सूक्ष्म रूप से भी हर चीज की डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब करेंगे, ठीक है? तो कम्युनिकेशन क्लियर मींस शब्दों में क्लैरिटी, सफाई मींस अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आना। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है सामने वाले का, एग्जाम्पल से क्लियर करती हूं। मान लीजिए आपको AEEPLE एप्पल को घर के हर मेंबर को बताना है, आप वाइफ या हस्बैंड के पास जाके कहेंगे एप्पल, ठीक है? दादा दादी के पास जाएंगे, उसको समझाएंगे, दिखाएंगे AEEPLE एप्पल। छोटा सा बच्चा है घर में, उसको भी सिखाना है AEEPLE एप्पल, उसको AEEPLE एप्पल याद कराएंगे, दिखाएंगे भी, काट के छील के टेस्ट भी करा के आएंगे, ये एप्पल आप भूलना मत, राइट? तीन प्रकार की कैटेगरी के लिए हमने तीन प्रकार के कम्युनिकेशन मेथड का यूज किया। क्यों? तो इट डजंट मीन कि, या हम इसको ऐसा कहें कि इसका मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं है सामने वाले को, कि उसको समझ में आई या बात नहीं आई। मुझे 100% पता था आप में से एक भी एक्टिविटी पूरी नहीं कर सकता, राइट? चलो ये तो सेशन की एक्टिविटी थी। प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, हम जब बॉस एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हैं, घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं, या सोसाइटी के किसी भी पॉइंट के रिलेशनशिप में हैं, हम उनको अपना काम तो बता देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते जो मैंने उसको बताया वो सामने वाले को समझ में आया नहीं आया। अब आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे समझे, तो इसके लिए मैं आंसर ये जरूर करूंगी, हम साथ रहते रहते इतना तो समझ जाते हैं कि सामने वाले को कैसे समझ में आएगा, इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सो कम्युनिकेशन रूल नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आनी चाहिए बात। तीसरा, मैं जो भी कम्युनिकेट करने जा रही हूं वो हम्बल होना चाहिए। अगर वो हम्बल नहीं है, नम्रता उसमें नहीं है, तो भी वो सामने वाले को समझ में नहीं आने वाला। कई बार हम काम करते करते इतना मशगूल हो जाते हैं उस काम में, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कम्युनिकेट करके आ गए और किस वे में और किस मैनर में करके आए हैं। वो हम्बल था या नहीं था, बॉसी तो नहीं था? अब मैंने आपको कहा तो नहीं कि आई एम द बॉस, लेकिन अंदर से आपको समझ में आ गया शी इज द बॉस ऑफ दिस एक्टिविटी, राइट? क्योंकि हम्बल नहीं था तो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ। कई बार हम काम को काम की रीति से लेते हैं, रिश्तों को समझ करके अंडरस्टैंड करते हुए कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, रिजल्ट गैप क्रिएट हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्द जितने मैटर करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं जो सटल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज वाइब्रेशंस। हम किस वाइब्रेशन से क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनली जो चल रहा होगा हम ये ना समझे कि वो मेरे तक ही है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा है। एक्चुअली वो आपने आइसबर्ग फिनोमेना सुना होगा ना, 80% बिलो द सी लेवल आइसबर्ग होता है, 20% अबव द सी लेवल होता है। सो So whatever I am communicating, actually I am just giving the instruction for 20% only with my body language, eyes expressions, shabdon se, likhat se. Lekin 80% internal vibration, subtle communication se kaam chal raha hai. So मुझे अब अंडरस्टैंड करना और अपने आप को चेक करना है कि मैं चीजों को किस तरह से कम्युनिकेट कर रही हूं. मेरे रिलेशनशिप्स में गैप का कारण कम्युनिकेशन तो नहीं है. आई नीड टू चेक एंड चेंज माई सेल्फ ओनली. फिर पॉइंट नंबर 2, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग. एक्टिविटी करें फिर से. इस एक्टिविटी की कोई शर्त नहीं है आपके लिए, खुशखबरी. ठीक है. अच्छा, इस एक्टिविटी में आपको फिर से नोटपैड पेन चाहिए होगा और इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पर अपने नाम का पहला और आखिरी अक्षर लगाना है. फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लाइन के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन पे. ठीक है, ये लाइन है, मैं अपना नाम ले रही हूं तो क्या लगेगा, कहां कहां पे क्या लगाओ, यहां डी और फिर ए. ठीक है, ऐसे ही है. हाँ या ना, अब कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, हाँ या ना. ओके, पर मैंने आपको जो कहा वो ये इंस्ट्रक्शन दी थी. अब फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कहा था आपको लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे अपने नाम का पहला और आखिरी अक्षर लगाना है. इंग्लिश में एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है बोथ या मस्ट कंडीशन होती है, और में ऑप्शनल होता है, राइट. इंग्लिश में मैंने क्या रिपीट किया था, आपको अपने फर्स्ट नाम का फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स लाइन के स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन पे लगाना है. तो मैं ये कह रही थी, अब यहां क्यों नहीं हुआ. अब मैंने कोई मना तो नहीं किया था कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. हाँ, ये तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो. फिर भी दो आएंगे ना, आप कौन सा पहले लगा रहे हो, आपकी मंशा क्या थी. वाइब्रेशन काम करेगा यहां पर अगेन. ठीक है, लाइफ में चलते चलते कई प्रकार की इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. इसका रीजन क्या होता है, हमें अंडरस्टैंडिंग इंटरनली अपने आप को देनी है. मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ही है अंडरस्टैंडिंग की कमी, राइट. मींस मैं जो आपको कहना चाह रही हूं वो आप नहीं समझ पाए, आपने मुझे जो कहा वो मैं नहीं समझ पाई, रिजल्ट मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड तीसरा फैक्टर मैं साथ में ले रही हूं, एक्सपेक्टेशंस ईगो या ऑलवेज राइट की मेंटालिटी. ये दो चीजों को मैं इकट्ठा कवर कर रही हूं. एक एग्जांपल से क्लियर करती हूं. हमारे पास एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जब डेली कनेक्शन में हो जाते हैं कोई भाई बहने, तो हम उनको स्टूडेंट्स कहते हैं. सो स्टूडेंट्स रेगुलरली सेंटर पर आते हैं, डेली गॉडली वर्शन सुनते हैं, मेडिटेशन के लिए आज सारा दिन क्या करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस, या उसकी इंस्ट्रक्शंस तो नहीं कहेंगे, उसकी गाइडेंस जो परमात्मा महावाक्य उनसे लेते हैं, एंड देन अपनी प्रैक्टिकली डेली की लाइफ को लीड करते हैं. तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली. जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी फैमिली की तरह हैं. तो जब भी वो कभी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो बता के जाते हैं कि दीदी मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप सोचना नहीं, मैं तो इतने दिन में नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, जो भी एक्स वाई जेड. सो एक कपल हमारे यहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूस कई वर्षों से चल रहे थे, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे. सो एक बार वो कई टाइम सेंटर पर नहीं आ रहे, उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया बहनों को. तो बहनों का संकल्प चला, और बाय चांस कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया, तो बहनों ने सोचा चलो आज हम मार्केट की ओर जा रहे हैं, उनका घर रास्ते में ही पड़ता है, तो उनसे मिलते हुए आते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही। तो बहनें उनके घर जाती हैं, बहनें डोरबेल बजाती हैं, वाइफ बाहर आती है, बहुत खुशी से बहनें देखती हैं तो अंदर लेकर के जाती है, उसको बिठाती है, और बाय चांस उसके युगल भी, उसके हस्बैंड भी उस दिन घर पे, तो दोनों आके बैठ जाते हैं, वाइफ पानी लेके आ जाती है, बहनें पानी पी के बैठी हैं, अब वो भी नहीं कुछ बोल रही, ये भी नहीं कुछ बोल रहे। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए जैसे हम जनरली कहते हैं अच्छा और कुछ और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बहनें जैसे ये सब बोलती हैं तो हस्बैंड अपनी वाइफ को इशारा करके तो तुम चुप रहना, मैं बोलता हूँ। कहते दीदी आप मेरी बात सुनो। बहनों ने कहा अच्छा भी बोलो। कहता है मैं ना दीदी डेली एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने के लिए मशीन बाहर निकालता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ बालकनी में, और जाने से ऑफिस जाने से पहले मशीन अंदर रख के जाता हूँ। 10 दिन पहले लगभग क्या हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने एक्सरसाइज के लिए मशीन बाहर निकाली, एक्सरसाइज की, और मैं उस दिन ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने वाइफ को बोला कि मेड आएगी तो मेड के साथ मिलकर के इसको अंदर रख देना, मशीन बहुत हैवी है अकेले नहीं रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ आज। कहते हैं ठीक है, मैं ऑफिस चला गया, शाम को आया मैंने देखा एक्सरसाइज मशीन वहीं की वहीं रखी है। कहते मैंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला, और हमने खाना खाया, चुपचाप मैं जाके सो गया। अब वाइफ कहती दीदी आप अब मेरी बात सुनो, और कहती है कि दीदी इन्होंने कहा था, मुझे याद था, लेकिन जब मेड आई तो काम इतना सारा था तो मैं प्रैक्टिकली भूल गई, और मेड चली गई तो मुझे रात तक भी एक्चुअली याद नहीं आया कि मुझे मशीन अंदर रखनी थी। रात को जब मैं सारे गेट खिड़कियां सब बंद कर रही थी तो मैंने देखा अरे एक्सरसाइज मशीन तो यहीं रह गई, तो मैंने धीरे से बिना शोर मचाए उसको अंदर रखने की कोशिश की, मैंने अंदर रख भी दी, लेकिन मेरी बैग पे थोड़ा सा स्प्रेन हो गया। तो हस्बैंड इतनी देर नहीं, तो तुमको किसने कहा था रखने के लिए, जब तुम भूल गई थी तो भूल जाती ना, पड़ी रहने देती, अब तुम्हारी बैग में रात को कुछ और हो जाता तो तुमको कौन हॉस्पिटल लेकर के जाता, हम दोनों ही रहते, कुछ हुआ तो नहीं ना, आप ऐसी बात का बदंगड़ बनाए जा रहे हो। एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ सिस्टर्स। 5 मिनट आपस में लड़ने के बाद, एक दूसरे की 10 साल पुरानी 5 साल पुरानी बातें सब निकालने के बाद, आखिर फाइनली हस्बैंड कहता है दीदी आप बताओ कौन राइट है कौन रॉन्ग है। बोलिए दोनों राइट हैं, दोनों गलत हैं। अच्छा और फिर कौन राइट है? हस्बैंड गलत है जी, वाइफ राइट है। अच्छा हस्बैंड को अच्छा, और आपको पता है प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप की सबसे बड़ी? हम हमेशा हर बात में ये सिद्ध करना चाहते हैं मैं हमेशा राइट हूं और तुम हमेशा रॉन्ग हो, और जहां पर हम ये सिद्ध करने में लग जाते हैं और उसकी जिद में आ जाते हैं, रिजल्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती ही जाएंगी, राइट? एक्चुअली में दोनों अपने पर्सपेक्टिव से राइट है, गलत कोई भी नहीं है, ना वो गलत है ना वो गलत है। उसने सोचा अच्छा हस्बैंड को सुबह वो कुछ संकल्प ना चले मैं अंदर रख देती हूँ, हस्बैंड ने सोचा अच्छा उसको केयर कर रहा है भाई तुम्हारे स्प्रेन हो गया और कुछ हो जाता तो क्या करते, अब स्प्रेन को भी तो दर्द सहना पड़ता है ना। आपको एक चीज और बताऊं, इस चक्कर में कई बार हम कहते हैं मैंने कुछ कहा तो नहीं ना, मैंने सहन कर लिया, 15 दिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन 15 दिन जो यहां रखा और यहां से संकल्प चला चला के जो कम्युनिकेशन भेजा, उसका जिम्मेवार कौन है? रिश्ते में वो कम्युनिकेशन जो भेजा और जिसकी वजह से जो गैप बढ़ा, उसका जिम्मेवार कौन है? आपने कभी ताश के पत्तों का गेम देखा है जिसमें बच्चे घर बनाते हैं ताश के पत्तों से, देखा है या खेला होगा? देखा है। तो क्या करते हैं, जब ताश के पत्तों से फाउंडेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? प्रेशर कितना डालते हैं बताओ? हल्का सा, बहुत लाइट, और बहुत धीरे धीरे बनाते हैं। जब उसके ऊपर का फर्स्ट लेवल बनाते हैं और हल्के से बढ़ाते तो नहीं है प्रेशर, कम करते हैं। थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे, लास्ट लेवल पे, लास्ट लेवल पे, थोड़ा जोर से बोलो, लास्ट लेवल पे, हाँ, पूरा नाम मात्र प्रेशर डले, इतना हल्के हाथों से रखते हैं, क्योंकि कि नीचे की बिल्डिंग गिर न जाए। प्रैक्टिकली जब हम किसी भी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे सोसाइटी में है, जब रिश्ते की हम शुरुआत करते हैं, आप याद कीजिए आपके शुरुआती दौर की, शादी के पहले 10 दिन, या शादी के, या ना ले तो जॉब के पहले 10 दिन, नई नई जॉब लगी थी, कैसे थे? हाँ, या बड़ा, जिस कॉलेज में हम जाना चाहते थे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वो 10 दिन कैसे थे? बड़े अच्छे थे। अच्छा, 6 महीने बाद बोलिए, 6 महीने बाद ठीक ठाक थे, 3 साल बाद, थर्ड लेवल पे आ जाओ, 3 साल बाद बोलना ही नहीं चाह रहे, और 10 साल बाद शक्ल भी नहीं देख सकते। हाँ, इस एग्जाम्पल से अगर हम प्रैक्टिकली समझें, जब हम किसी भी रिश्ते की शुरुआत करते हैं बहुत प्यार से, केयर से, अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, इट्स ओके, और लेट गो करते जाते हैं, कुछ दिखता भी है ना, उसको देखते नहीं है। जब थोड़े टाइम बाद उस रिश्ते की बॉन्डिंग को और स्ट्रांग करने का टाइम आता है, हम क्या करते हैं, प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और 3 साल बाद प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सॉरी टू यूज वर्ड, आई एम गोइंग टू यूज दिस, हम रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए 10 साल बाद हम आज ये भी कह रहे हैं कि हम शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, वर्स्ट कंडीशन में आ गए हैं, इट्स ओके, छोड़ दो। क्यों? अंडरस्टैंड करने की बात है, अपने आप को इंटरनली अंडरस्टैंडिंग यहां पर देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, जब इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आती है ना, तो हम उसको बैठ करके आपस में बात करके क्लियर कर सकते हैं, और जहां पर वो क्लियर नहीं हो रही है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, इट्स ओके, मैं ये कहना चाह रही थी, शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाई, सो इट इज ओके, राइट, लेट गो कर देते हैं, इसमें उनको डिसरिस्पेक्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि रिश्ते का फाउंडेशन है प्यार और रिस्पेक्ट। आप प्यार दे रहे हो, 50 के आगे डांट रहे हो, वो कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी भी नहीं रहेंगे आपके साथ कोई भी। रिस्पेक्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना प्यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्यार और रिस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, हम हमेशा उनके भी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, हमको अंडरस्टैंड करके एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप को देनी है। मान लीजिए मुझे उनका कोई संस्कार पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई मार्केट में एक नई मूवी रिलीज होती है, उस मूवी के आपको कितने गाने पसंद होते हैं? कितने गाने पसंद होते हैं? 1 या 2, बाकी नहीं पसंद होते। तो आप क्या करते हैं, उस 1 या 2 को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। इंटरनली भी यही करना है, जो संस्कार मुझे रिश्ते में जो जिनके साथ भी हम हैं उसका वो डाउनलोड करना है, और जो पसंद नहीं है उसको लेट गो करना है। हम उल्टा कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो पसंद नहीं है उसको डाउनलोड पे डाउनलोड करे जा रहे हैं और उसको प्ले पे प्ले करे जा रहे हैं, और जो पसंद मतलब जो चीज अच्छी है उसको हम इग्नोर करे जा रहे हैं। रिजल्ट गैप बढ़ता जा रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हुए मुझे चेंज करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। इसकी भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, कोई भी दो लोग सामने आ जाए। मेरे पास कितना समय है अभी? टेन मिनट्स, मुझे 12:30 तक बोला था शायद। ओके, कोई भी दो लोग सामने आ जाए, लेकिन एक ऐसे होने चाहिए जिनके पास, हाँ कोई बहन भी आ सकते हैं, दुपट्टा भी चलेगा। हाँ कोई एक और आ जाए साथ में, एक एक्टिविटी हम करेंगे बहुत अच्छी। ओके, सो क्या करना है, अब सिस्टर के पास दुपट्टा है तो इन्हीं को ही यूज करना पड़ेगा। आपको इस दुपट्टे से आंखों पे पट्टी बांधनी है, इसको अच्छे से रैप करके फोल्ड करो, मल्टी फोल्ड, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खराब हो जाएगा, वैसे ले लो। हाँ, और आप इनको मदद कर दो थोड़ा सा, इनको पट्टी बांधने में आपको बांधनी है, क्योंकि आप ही का दुपट्टा है तो बेटर है आप ही बांध लो, ठीक है। बाकी आप सभी दर्शक हैं, अब यहां पर जो भी घटना घटित होने जा रही है आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, आपको एक भी शब्द मुख से उच्चारना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दर्शक हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से सिर्फ देखिएगा, इन्होंने ज्यादा फोल्ड कर दिया, नहीं आप हाँ लंबे में लंबाई में डालिए, हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब बांधो बांधो, ठीक है, समझ आ गया। आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, दर्शक है, आप मुख से कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप मदद के लिए उठ नहीं सकते हैं, ठीक है। सिस्टर आपका नाम क्या है जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है? सीमा जी। आपका नाम क्या है? पूर्वा। ओके, सो पूर्वा जी आपको क्या करना है, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई, आपको कुछ दिख तो नहीं रहा सिस्टर? हाँ आप ट्रस्ट कर ले पूरा, अच्छा बंद भी कर रखिए, ठीक है। ओके, सो पूर्वा जी को, सीमा जी को इंस्ट्रक्शन देनी है और इनको इस पूरी इसमें चलाना है। आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे ये वैसे वैसे चलेंगी, ठीक है। ओके सिस्टर, आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट करके जो जो इंस्ट्रक्शंस ये आपको दे रही हैं वैसे वैसे चलते जाना है, ठीक है। सीमा जी ठीक है, ये आप, आपको इनका हाथ नहीं पकड़ना है, ये एक जगह खड़ी रहेंगी, आपको ये जो बस कहेंगी आपको उसको सुन करके चलना है, आप डरिएगा नहीं, हम आपको गिरने नहीं देंगे, ठीक है। हाँ सिस्टर मैं आपको माइक दे दूं, ठीक है। आप लोग कौन है? सिर्फ और सिर्फ, आप इधर आ जाओ। अब आप इनको इंस्ट्रक्शंस देना और इनको आपको मूव कराना है।
आपको चप्पल पहनने नहीं आएगा। अब थ्री स्टेप्स आगे चलिए, फिर राइट में सिक्स स्टेप्स, थोड़ा सा लेफ्ट और फिर थ्री स्टेप्स, थोड़ा सा लेफ्ट, दो स्टेप्स, अभी लेफ्ट में सेवन स्टेप्स सीधा, थोड़ा सा लेफ्ट आ जाइए, थ्री स्टेप्स, चलो फिर से आगे, थोड़ा सा लेफ्ट, हाँ फिर से राइट मुड़ जाइए, इतना राइट नहीं थोड़ा सा राइट, सीधा चलना है फाइव स्टेप्स, और थ्री स्टेप्स चलना है,
ओके थैंक यू. थैंक यू सिस्टर. आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं. यहाँ पर आ जाओ, स्टेज के पास आ जाओ. देखो कितना फास्ट चल रहा है ना. थैंक यू सो मच सीमा जी का भी और पूर्वा बहन का भी. तालियां तो बजा दो इनके लिए. अच्छा, आपको लगता है पूर्वा ने ठीक इंस्ट्रक्शंस दी? पूरे ठीक नहीं थे, ठीक थे? अच्छा, सीमा जी ने इंस्ट्रक्शंस को ठीक फॉलो किया? ठीक फॉलो किया? ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, सब सोच में पड़े हुए हैं. नींद तो नहीं आ रही? सुन रहे हैं ना? जो नहीं सुन रहे हैं वो हाथ खड़ा करो. सब सुन रहे हैं, ठीक है. ओके, हमने ये जो एक्टिविटी की शुरुआत में हमने सीमा जी को ये कहा कि आप ट्रस्ट रखिएगा, हम आपको गिरने नहीं देंगे. जनरली ऐसा ही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं इस एक्टिविटी को. फिर जब आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उनको कहा गया आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, कहीं सटल में ये चला होगा, अरे मैं गिर गई तो, चोट लग गई तो कैसे चलूंगी. सटल में, हल्का सा, बहुत स्ट्रांग संकल्प नहीं, सटल में. उसका रिजल्ट हमें प्रैक्टिकल बिहेवियर में दिखने को क्या मिला? वो स्टेप्स को बहुत सोच सोच के रख रहे थे, राइट? पूर्वा जी को इंस्ट्रक्शंस देने को कहा गया था और कहा गया था यहीं खड़े रहना है आपको, कुछ नहीं करना. तो वो भी इंटरनली सोच रही थी कितने स्टेप आगे बढ़ाऊं, कितने स्टेप पीछे करना है, राइट? प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों को ही एक दूसरे पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट था, डाउट ज्यादा था. प्रैक्टिकली हम देखें, क्या हम ये कहते हैं मैं 90% आप पे ट्रस्ट करती हूं, 10% डाउट है, कहते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में? ये समझ नहीं आया मुझे, हाँ था या ना था. हाँ नहीं कहते, क्या कहते हैं? मैं तुम पे पूरा विश्वास करती हूं. पूरा का मतलब 100%. आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, जिस पे मैं कह रही हूं मैं तुम पे पूरा विश्वास रखती हूं, उसको मैंने एक काम करने को दिया, ठीक है? और अंदर क्या करते हैं हम, पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, पता नहीं काम दे दिया कुछ रिपोर्ट भी नहीं कर रहे, कितना किया कितना नहीं किया, इतना तो बताना चाहिए. इज इट 100% ट्रस्ट? आपको पता है हमारी दादी जानकी जी थे, शी वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज. 104 ईयर्स के थे जब उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, प्रैक्टिकल बॉडी लाइफ को छोड़ा. जब वो 100 ईयर्स की कंप्लीट हुई और चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, तो एक मैगजीन वाला उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आया. मैगजीन वाले ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे, लास्ट में उसने एक दो क्वेश्चंस पूछे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मैगजीन वाले ने पूछा, दादी जी आपकी इतनी बड़ी संस्था है, 140 कंट्रीज में अप्रोक्सीमेट 5000 आपके ये सेंटर्स हैं, तो आप कैसे, और इतने सारे भाई बहने हैं जो समर्पित रूप से रह रहे हैं, और आप शायद कितनों से तो मिले भी नहीं होंगी, पर आप संस्था चला रहे हैं हेड ऑफ चीफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज के रूप से, सो आप कैसे ट्रस्ट कर पाते हैं कि आपकी संस्था को ठीक से चला रहे हैं या नहीं चला रहे? दादी ने दो बहुत अच्छे आंसर्स किए. पहला आंसर दादी ने किया स्पिरिचुअल आंसर, परमात्मा की संस्था है, परमात्मा चला रहा है, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल. दूसरा भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत सटल वे में प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने जैसी बात उन्होंने बताई. उन्होंने कहा कि मैं कब कहती हूं मुझे तुम पर विश्वास नहीं है या तुम पर मैं ट्रस्ट नहीं करती, जब मेरा मेरे ऊपर अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है. एग्जाम्पल से क्लियर करती हूं. मान लीजिए मैंने निश्चित किया कि कल मैं हर रोज सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और ऑफिस के लिए मैं लेट हो जाती हूँ, कल से मैं आधा घंटा पहले उठूंगी, ठीक है? मैंने आज दृढ़ संकल्प किया कल से मुझे 5 बजे उठना ही है, ताकि मैं थोड़ा आराम से काम भी कर पाऊँ और इजिली चल भी पाऊँ. शुरू किया 5 बजे, स्टार्ट हुआ. अब जैसे ही रात को मैं सोने लगी, मैं फोन में अलार्म सेट करती हूँ. माइंड में मैंने पूरा दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे कल 5 बजे उठना है. मैंने अब अलार्म सेट करना शुरू किया. पहला अलार्म मैं लगाती हूँ पांच बजे का, राइट। इस दृढ़ संकल्प की शुरुआत होती है सेल्फ डाउट से, क्योंकि दूसरा अलार्म लगता है अगर नहीं उठी तो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं थोड़ा बहुत? कंप्यूटर में इफ एल्स क्लॉज होते हैं, ठीक है। इफ उठ गई तो पांच बजे, एल्स 5:15 वाला अलार्म है, राइट। ओके, फिर से स्टार्ट होता है। अब मॉर्निंग हो जाती, फिर 5:15 के बाद तीसरा अलार्म होता है 5:30 का, वो तो रोज वाला है ही है। सुबह होती है, संकल्प तो बड़ा दृढ़ था कि उठना है 5 बजे। सटल वे में प्रोग्रामिंग की है, अगर इफ काम नहीं आया तो एल्स को यूज कर लेना। सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही हम उसको स्नूज पे डाल के 10 मिनट के फिर से सो जाते हैं, क्योंकि एल्स अभी है, ऑप्शन है। तो संकल्प की दृढ़ता में कमी किसने लाई? आप मुझे एक प्रैक्टिकली बात बताइए, आप मुझे एक बार कोई काम देते हैं करने के लिए, मैं नहीं करती, आपने मुझे दूसरी बार दिया मैंने फिर नहीं किया, आपने मुझे 10 बार एक काम दिया मैंने 10 बार आपका काम नहीं किया और 10वीं बार आपको टाल दिया, आप 11वीं बार मुझे देंगे, राइट। जब आप 11वीं बार मुझे चांस नहीं दे सकते, सटल वे में मैं रोज अपने आप के साथ कितने सारे रेजोल्यूशंस बनाती हूँ और कितने सारे रेजोल्यूशंस को मैं खुद ही तोड़ देती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ मैं अपने आप पे खुद को ट्रस्ट करती हूँ? और जब मैं खुद को खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करती तो क्या मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करूंगी? तो दादी ने ये बहुत अच्छी बात कही, हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसका रीजन कहीं ना कहीं सेल्फ में बहुत सारे डाउट सभी बाकी हैं। सो आज से हम शुरुआत करें सेल्फ को ठीक करने से, छोटे छोटे रेजोल्यूशंस, उसको हम दृढ़ता से कंप्लीट करें, ताकि सेल्फ पर मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास बढ़ता जाए और मैं रिलेशनशिप्स में भी ट्रस्ट और बढ़ा सकूं, ठीक है। ओके, चार ही पॉइंट कवर हुए, पांचवा भी छोड़ देते हैं अब। हाँ, क्वेश्चंस भी पूछेंगे ना, तो 10 मिनट्स क्वेश्चन के लेने पड़ेंगे, जिनको सुनना है उनसे तो पूछ लो। ठीक है ना, इतना बहुत है आपके। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी अंदर में क्वेश्चन आ रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको और क्लैरिटी से कैसे करें, या जनरल कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड। तभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, वो उसकी सोच है अपने गुस्से नहीं। हम ये जरूर निश्चित करें, मैं किसी की सोच के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, मुझे मेरा रास्ता खुद बनाना है और तय करना है, क्रिएट भी करना है और तय भी करना है। सो सामने वाला जो गलती कर रहा है उसके लिए मैं कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, इफ इट इज पॉसिबल, अगर कोई सर्टेन सिचुएशन है उसके, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देन मुझे कैसे मोल्ड होके निकलना है, दैट आई हैव टू डिसाइड, ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चन? बस कोई क्वेश्चन नहीं है, डन, ऑल क्लियर। पांचवा है अजम्पशंस, उसको ले लेते हैं, फिर जब हमारे 5 मिनट बच गए तो ले लेते हैं अजम्पशंस। कई बार हम बहुत अजम्पशंस अज्यूम कर लेते हैं चीजों को, है ना। आपने वो एक नॉवल है, मुझे याद नहीं आ रहा उसके राइटर का नाम, बहुत फेमस नॉवल है जिसमें स्टोरी है उस नॉवल की कि एक बार एक राजा होता है, उसकी एक रानी होती है, वो अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, बहुत उसको बहुत स्नेह होता है उससे। तो राजा के लिए कई एक रानी वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रही होती है उसके मंत्री के साथ मिलके। तो राजा को प्रॉपर बात तो पता नहीं होती, लेकिन उसको भनक पड़ जाते कि आजकल मंत्री के साथ ही थोड़ा ज्यादा कुछ चल रहा है, तो उसको डाउट होना शुरू हो जाता है। शक के ऊपर ये नॉवल स्टोरी बनी हुई है, ओथेलो, शायद ओथेलो की स्टोरी है, बहुत फेमस है ये, उसका ड्रामा है शायद। सो उसको, हाँ, शेक्सपियर का ओथेलो है, राइट। सो उसको डाउट होना शुरू हो जाता है, उसको डाउट के वैसी एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। फाइनली राजा को इतना शक बढ़ जाता है, उसको इतना गुस्सा आता है, अपनी रानी को मरवा देता है। फाइनली जब रानी मर चुकी होती है, तो उसको लास्ट में पता चलता है कि रानी बहुत अच्छी थी, ऐसा उस लॉयल थी मेरे लिए, और ये सारा मेरी ही गलती थी। अब राज्य में जब ये बात फैल जाती कि राजा ने अपनी रानी को मरवा दिया, तो राजा को राज्य पद से भी हटा दिया जाता है। तो उसका एंड ऐसे कॉन्क्लूजन दिया है, राजा के पास राज्य भी गया, रानी भी गई, सब कुछ खो दिया। किस बेसिस पे? एक शक के बेसिस पे। तो कई बार रिलेशनशिप्स में हम छोटे छोटे डाउट्स करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए हम दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे आपस में, और तीसरा जब वहां से गुजरा तो हम उसको देखने लग गए अचानक बात बंद करके, तो तीसरा क्या सोचता है? मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, मेरे को देखना शुरू कर दिया। रिजल्ट, अब वो बार बार आके पूछेंगे, अच्छा बताओ मेरे बारे में तुम क्या बात कर रहे थे? और हम सच में ही नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, वो समझते ही नहीं, अज्यूम करते रहते हैं कि नहीं, ये मेरे बारे में ही पक्का कुछ बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार हम अजम्पशंस रिलेशनशिप्स में ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा आज ऐसे किया, कल का दिन तो नया है, 10 साल बाद तो कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो हम वो 10 साल पहले के अपने वो अजम्पशंस और अपने परसेप्शंस लेकर के चलते रहते हैं। रिजल्ट, रिलेशनशिप कभी भी हार्मोनाइज नहीं हो पाएंगे, उसके लिए मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बहुत, है ना। तो किसी भी चीज के लिए अज्यूम ना करें, बेटर है हम कम्युनिकेट करके चीजों को क्लियर कर दें। और अगर मान लीजिए कोई चीज कम्युनिकेशन से क्लियर नहीं हो रही है, तो थोड़े टाइम के लिए समय पर वो बात छोड़ करके थोड़ा सा अंदर आत्मविश्वास और निश्चय के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो बातें और जो चीजें हैं वो क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, सामने वाले का संस्कार हो मेरे ऊपर शक करना, मेरे ऊपर करना या मेरे, हाँ, उसका ही संस्कार है और मैं भी समझ रही हूं, तो मुझे चेंज करने की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मेरे कौन से एक्शंस के कारण इनको बार बार मेरे पर डाउट हो रहा है, ऐसी कौन सी बात है। और अगर फॉर एग्जांपल वो डिटैच ऑब्जर्वर के नाते मैंने अपने आप को चेक कर लिया और मुझे अपने अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई कमी नहीं दिख रही है, तो मुझे थोड़ा सा अपना रास्ता एक नए तरीके से सामने वाले के संस्कार को समझ करके बनाना पड़ेगा, है ना। रास्ता बनाना है, तोड़ने के लिए नहीं कह रही मैं, ताकि हम उनके उस संस्कार को समझ के, अंडरस्टैंड करके, मुझे कैसे मोल्ड होकर के चलना है ये मुझे डिसाइड करना है। ओके जी, कोई और क्वेश्चन है? नहीं, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, सेशन को एंड करते हैं। इस साइलेंस में अब हम सारी चीजों को देखते हुए, चेक करते हुए, हम निश्चित करेंगे कि मुझे अपने अंदर क्या ऐसा ठीक करना है, छोटी सी कोई बात, जिससे मेरे रिलेशनशिप्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या बहन जी का। एक्चुअली अचानक और एवर रेडी जो कहते हैं वो हमारी दिव्या बहन जी है। कल ही हमने उनको सुप्रिया दीदी के माध्यम से कॉल किया था और आपने तुरंत हाँ किया, तो क्योंकि कुछ अलग प्लान था पर वो हो नहीं पाया आज, इसलिए अचानक के लिए इन्होंने हाँ किया और बहुत सुंदर रीति से हमें इस टॉपिक के ऊपर समझाया, इसलिए हम जोरदार तालियों से फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम आपको पूना आने के लिए भी निमंत्रण दे रहे हैं, कुछ बहनें ORC की आकर गई है तो आप भी जरूर आना कार्यक्रम। ठीक है ओके, ओम शांति ओम शांति।